आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक रूप से फलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। यह घोषणा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने न्यूयॉर्क सिटी स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर की। सरकार का कहना है कि यह कदम इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के द्वि राज्य समाधान के प्रयास का हिस्सा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन देशों को चेतावनी दी है और कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि फिलिस्तीनी राज्य कभी अस्तित्व में न आए।
The Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. One of those states is, of course, Israel. The other, of course, is Palestine. And this recognition being announced today in sync with our international partners, the United Kingdom and Canada, means that three of the Five Eyes nations are all making this decision today.
यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ऑस्ट्रेलिया द्वारा फलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की। इसका मतलब है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी उन 150 से अधिक देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने फलिस्तीनी संप्रभु राज्य को मान्यता दी है, और इस कदम की घोषणा कनाडा, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम के साथ की गई है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल अकाल प्रभावित गाजा शहर पर बमबारी जारी रखे हुए है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध में अब तक 65,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अल्बनीसी का कहना है कि यह निर्णय फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा कई आश्वासनों के बाद उठाया गया है जो कब्जे वाले पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों का प्रशासन करता है, और इसे भविष्य के राज्य के संभावित नेतृत्व के रूप में देखा जाता है।
Our act of recognition is based on the commitments received from the Palestinian Authority, including that the terrorists of Hamas cannot govern Gaza again. Palestine recognizes Israel's right to exist in peace and security. And the Palestinian Authority will demilitarize and hold democratic elections, driving broader reform to governance, finance and education.
फ्रांस और बेल्जियम भी इस सप्ताह फलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम की मान्यता का विशेष प्रतीकात्मक महत्व है क्योंकि यह सरकार के वॉल्फोर घोषणा पत्र द्वारा इस क्षेत्र में एक यहूदी राज्य के निर्माण का समर्थन करने के 108 साल बाद और इसराइल के निर्माण के 77 साल बाद की गई है, जिसे उस समय ब्रिटिश जनादेश के रूप में माना जाता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर का कहना है कि यह मान्यता लंबे समय से चले आ रहे इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के द्वि राज्य समाधान की ओर बढ़ने का एकमात्र तरीका है।
Today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also.
UK में फिलिस्तीनी मिशन के प्रमुख हुशम जामलोट ने अपने फोन पर इस घोषणा को देखा।
The state of Palestine.
वह इसे ब्रिटेन की ऐतिहासिक गलती को सुधारने की दिशा में एक कदम मानकर जश्न मना रहे हैं।
This is a historic day simply because it begins to correct the historic injustices that Britain has played a direct role in the agony of the Palestinian people. Recognition is not about the existence of the Palestinian people. We have existed long ago, long before the Balfour Declaration. Recognition is about ending the denial.
हालांकि इस कदम से इजरायली सरकार नाराज है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों को कड़े शब्दों में कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे कि किसी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना ना हो।
You're giving a huge reward to terrorism, and I have another message for you. It will not happen. A Palestinian state will not be established west of the Jordan River. For years, I have prevented the establishment of this terrorist state, despite tremendous pressure both domestically and internationally. Moreover, we doubled Jewish settlement in Judea and Samaria, and we will continue on this path.
एल्बनीजी की इस घोषणा ने उनके 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे का एजेंडा तय कर दिया है, जहां वह उच्च स्तरीय लीडर्स वीक समिट में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष ने नेतन्याहू का समर्थन किया है। विपक्षी नेता सूजन ली और विदेश मामलों की प्रवक्ता माइकेलिया कैश ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार पर हमास के दबाव में आने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह एक खोखला कदम है जो फिलिस्तीनियों को झूठी उम्मीद देता है। कुछ यहूदी समुदाय संगठनों ने भी यही रुख अपनाया है। ऑस्ट्रेलियाई यहूदी कार्यकारी परिषद ने फिलिस्तीनी राज्य को ऑस्ट्रेलिया की मान्यता की निंदा की है। परिषद के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्स रिवचिन का कहना है कि इससे गाजा के फिलिस्तीनियों की पीड़ा समाप्त नहीं होगी और न ही हमास की कैद में बचे इजरायली बंधकों की रिहाई होगी।
We're bitterly disappointed by this announcement. We're not shocked by it. This was obviously on the cards, but it doesn't lessen the blow. Fundamentally, this is bad policy. It doesn't change anything on the ground. It doesn't resolve the issues that have been between the Palestinians and the Israelis for decades now. It doesn't bring anyone closer to peace or to ending the war in Gaza or releasing the hostages. All this does is it emboldens the most extreme actors, particularly Hamas. It shows them that their strategy of terrorism to achieve political transformation is a winner.
हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ अन्य यहूदी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। साथ ही यह भी कहा है कि गाजा में तबाही को रोकने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। ज्यूइश काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मैक्स काइजर कहते हैं,
Certainly puts Australia at odds with Israel and the United States, but I think that's to be welcomed. The real problem with this move is that it sort of tries to treat them going forward as equal states, has no bearing on the actual power situation on the ground, because Israel controls the whole territory from the Mediterranean Sea to the Jordan River. It's a system that has been legally found to be an apartheid system, and nothing that Israel has said, done, over the past few decades indicates that they have any interest in a two-state solution.
उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को प्रतीकात्मक कार्रवाई से आगे बढ़कर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और दोतरफा व्यापार समाप्त करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस बीच यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया को उसके सबसे करीबी सुरक्षा सहयोगी अमेरिका के साथ टकराव में डाल देगा। वहीं नेतन्याहू चेतावनी दे रहे हैं कि इसराइल की इच्छा के विरुद्ध काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी।
The response to the latest attempt to impose a terrorist state in the heart of our land will be given after my return from the United States. Wait for it.
SBS News से सैम डोबर की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया शशि कुमार ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने? इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।